इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान की फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न और स्टेज की एक मायानास शख्सियत मोहतरम जनाब कवि खान साहब मौजूद हैं, जो यहाँ ऑस्ट्रेलिया भी तशरीफ़ ला रहे हैं और हम अपने सामईन की दिलचस्पी के लिए उनसे कुछ बातचीत कर रहे हैं। कवि साहब, उर्दू सामईन की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सामईन के लिए वक्त निकालने का।
जी, मेरी तरफ से भी और ऑस्ट्रेलिया में जितने भी उर्दू को समझने वाले, बोलने वाले हैं, सबकी खिदमत मेरा मेरा बहुत बहुत सलाम पहुंचे।
कवि साहब, आप पाकिस्तान में जो लोग टेलीविज़न देखने वाले हैं, सिनेमा देखने वाले हैं, स्टेज देखने वाले हैं, उनके लिए एक हाउस होल्ड की हैसियत रखते हैं, जाना पहचाना नाम है, लोग आपके बड़े फ़ैन हैं। आपको ज़रा मैं पीछे की तरफ ले जाऊंगा और थोड़ा सा हमारे सामईन से ये शेयर कीजिए कि आपका ये फ़नी सफ़र कब शुरू हुआ और आपकी सबसे पहली कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस थी जिससे आपकी पहचान बनी?
ये असल में मुझे तो रेडियो, टेलीविजन, स्टेज और फिर फिल्म, यानी मैं स्टेप बाय स्टेप आया। और मैं जब 6-7 साल का था तब से मैंने रेडियो जाना शुरू कर दिया था और मैं बच्चों के प्रोग्राम्स में वहाँ पार्टिसिपेट करता था।
किस
हमारे
रेडियो
रेडियो
स्टेशन का ये जिक्र है?
पाकिस्तान पेशावर,
पिशावर से। जी
जी हाँ, ये कोई 52-53 की बात है। तो वो रेडियो से सफर शुरू किया और उसके बाद मैं रेडियो के जनरल बड़े प्रोग्राम्स करने लगा। फिर मैं 61 में लाहौर आया और फिर मैं अलहमरा आर्ट काउंसिल में जो ड्रामे होते थे उनमें करने लगा और फिर वहीं से फिल्म में मैंने काम किया और थिएटर, फिल्म और फिर 64 में टेलीविजन आ गया। वो टेलीविजन आ गया तो 64 में जब टीवी आया तो उसका मैंने ऑडिशन लिया बाकायदा। 2-3 महीने मुझसे रिहर्सल कराई गई है, उसके बाद मुझे बताया गया कि मुझे उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है। तो इस हवाले से फिर टेलीविजन का मैं पाकिस्तान में सबसे पहला, समझ लें, हीरो, पहले ड्रामे का जो 28 नवंबर 64 में ऑन एयर गया था तो उसका मैं हीरो हुआ। और तब से 64 से अब तक मैं टेलीविजन पर काम कर रहा हूँ, थिएटर भी कर लेता हूँ, रेडियो भी जब मौका मिलता कर लेता हूँ, फिल्में अब मैंने जरा कम कर दी हैं तो फिल्में मैंने बनाई भी हैं, कोई 12 फिल्में मैंने
जी, मैं
प्रोड्यूस
ज़रा
भी
उसका भी
की।
जिक्र करूंगा। अभी आपको हम थोड़ा माजी की तरफ ही रखेंगे। ये जो आपने 28 नवंबर 1964 के एक ड्रामे की रिकॉर्डिंग का जिक्र किया, उस ज़माने में रिकॉर्डिंग तो मेरे ख्याल में कम होती थी, लाइव प्रोग्राम ही ज़्यादा जाते थे, तो
या लाइव
ये
है,
ड्रामा भी लाइव था। और कुछ इसका नाम
लाइव
याद है
था।
आपको, किस कौन इसका
जी
हिदायतकार
जी
था?
जी उस ड्रामे का नाम तो मैं कैसे भूल सकता हूँ, तो पहली सीढ़ी थी टेलीविजन की आगे बढ़ने की। तो वो उसका नाम था नजराना और उसमें उसको लिखा था नजमा फारूकी साहबा ने, तो और उसको डायरेक्ट किया था हमारे फजल कमार मरहूम ने, जो
जी,
डीएमडी रह चुके हैं हमारे टेलीविजन के।
और कौन कौन था आपके साथ उस कास्ट में?
उसमें कमल था, आप जानते होंगे, मोनी हमीद
जी,
हमारी
मोनी हमीद।
रेडियो की बहुत बड़ी
जी जी
अदाकारा है,
जी जी
उनकी बेटी थी कमल
कमल कमल नसीम।
जो कि अब इस्लामाबाद में है, और वो पहली हीरोइन थी पाकिस्तान टेलीविजन की ड्रामे की और मैं पहला हीरो था। और उसमें हमारे मरहूम रशीद उमर थानवी और बख्तियार अहमद और बहुत से लोग थे उसमें उस वक्त।
1964 से लेके सन 2016 तक पुलों के नीचे से हज़ारों क्यूसेक पानी गुजर चुका है। कवि साहब ने टेलीविज़न से लेके स्टेज और फिल्म की दुनिया तक पे अपनी धाक बिठाई। जो लोग तमाम मीडियाज़ पे काम करते हैं, उनका एक ख़ास नुक्ता नज़र आमतौर पे स्टेज के बारे में होता है कि वहाँ जो उनको इमीडिएट रिस्पॉन्स, फ़ौरी रद्द अमल जो मिलता है, کیا آپ کو بھی ایسا ہی تجربہ ہے کہ ان تمام میڈیمز میں اسٹیج میں آپ کو کام کرنے میں زیادہ لطف آتا رہا، یا کوئی اور ایسا میڈیا بھی آپ نے بہت انجوائے کیا؟
نہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اسٹیج کا لطف کچھ اور ہی ہوتا ہے. جب میں کالج میں تھا تو اور میں نے وہاں اسٹیج کیا تھا شروع شروع میں، یہ بھی میں کوئی 56 کی بات کر رہا ہوں، تو ہیروئن جو ہے ہمارے پشاور میں، وہاں اس لڑکی کے گھر والوں نے منع کر دیا، اور اس دن شو بھی تھا، تو لڑکیاں اس زمانے میں کام نہیں کیا کرتی تھی تھیٹر ویٹر میں. تو پھر وہ اتفاق ایسا ہوا کہ میں نے اپنی خدمات پیش کی، اور میں ہاف ٹائم سے پہلے اس میں ایک سپاہی کا رول کرتا تھا، اور ہاف ٹائم کے بعد میں میک اپ کر لیتا تھا، اور پھر وہ میں جو اس کی ہیروئن تھی اس کا رول کرتا تھا. تو وہ ایک ابتدا ایسی تھی، اور اس کی فوراً ہی داد مل جاتی تھی. یعنی تھیٹر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا، جو کچھ آپ بولتے ہیں کہتے ہیں تو سامنے ہی ریسپانس مل جاتا ہے، اور وہ تالیاں جو ہیں وہ آپ کو پھر آپ کی اس کیفیت کا جو آگے بڑھنے کی ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور اس پروفیشن میں جانا ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے.
یہ تو آپ کی اسٹیج کی ابتدائی دنوں کی بات ہو گئی. اس کے بعد آپ ٹیلی ویژن سے، اور پھر ٹیلی ویژن سے آپ نے فلموں کی طرف رخ کیا. کون سی پہلی فلم تھی اور کس سن کی بات؟
جی یہ بات ہے 64 کی. جب میں لاہور 61 میں آیا تو میں تھیٹر کرنے لگا اور ریڈیو کرنے لگا. تو اس کے بعد حقیقت میں شوق مجھے فلم میں کام کرنے کا تھا، تو پھر میں فلم کی طرف میں نے رخ کیا. اور میں دلجیت مرزا، ہمارے بہت اچھے ایکٹر اور ڈائریکٹر، تو ان کی خدمت میں میں حاضر ہوا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ میرے اسسٹنٹ بن جائیں تو ہم آپ کو کام بھی دیں گے اور آپ کو فلم کا طور طریقے بھی آ جائیں گے. تو میں ان کا اسسٹنٹ ہو گیا. تو میں اسلم پرویز مرو، ہمارے بہت بڑے اداکار تھے، تو ان کا ایک سبارڈینیٹ ہوتا ہے اس فلم میں. فلم کا نام تھا رواج.
جی زیبا، محمد علی زیبا کی فلم تھی.
جی ہاں، زیبا، محمد علی، آغا تالیش اور دیبا، اور پھر وہ اسلم پرویز، اور ان کا میں اسسٹنٹ ہوتا ہوں. وہ ویلن تھے، میں سائیڈ ویلن سمجھ لے. تو وہ فلم نکلی، وہ فلم بہت چلی، اور اس کے بعد میں ہی سب کو پتا چلا کہ اچھا میں نے اس میں کام بھی کیا تھا، کسی کو بتاتا نہیں تھا. تو 64 میں ہی اتفاق ایسا ہوا کہ پاکستان میں ٹیلی ویژن آ گیا، اور فضل کمال جو اس کے پروڈیوسر تھے، میں نے ان سے کہا کہ میرا ایک کھیل چل رہا تھا ان دنوں تھیٹر کا، تو میں نے کہا آپ تھیٹر دیکھ لیجئے، مجھے بہت شوق ہے. تو ان کا کہ بہت شوق ہے، میں نے کہا ہاں. بولے پھر آ جانا تم. تو میں چلا گیا اور میں نے ان کو اپنا آڈیشن وغیرہ دیا، تو انہوں نے جو پہلا کھیل تھا اس کی ریہرسل شروع کر دی کرانی، اور مجھے بتایا نہیں کہ میں اس میں کام کروں گا، سلیکٹ ہوں گا یا نہیں ہوں گا. انہوں کا بس ریہرسل کرتے رہو. تو وہ میں پھر کچھ 2 مہینے کے بعد پتا چلا کہ بھائی جتنے بھی لوگ تھے ان میں مجھے انہوں نے سلیکٹ کر لیا ہے. تو اس طرح وہ لائیو پروگرام مجھے پھر وہ، کیونکہ ازبر کرنا ہوتا تھا سارا کچھ، ایک ایک جملہ، ایک ایک فقرہ، اور وہ ریکارڈنگ لائیو، ریکارڈنگ تو ہوتی نہیں تھی اس زمانے میں، سسٹم ہی نہیں تھا. تو وہ ہمارا پھر مہینے میں یعنی کچھ 4 پروگرام میں تھیٹر تو کرتا ہی تھا، ٹی وی کے کر لیتا تھا، فلم آہستہ آہستہ چل رہی تھی. پھر فلم سے میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا آؤٹ کر لیا تھا، اس کا زیادہ لطف آ رہا تھا. لیکن پھر میں ایک تھیٹر کر رہا تھا، تو بہو رانی ایک فلم تھی، اس کے ایس ایم یوسف ڈائریکٹر تھے جو ہندوستان سے تشریف لائے تھے ان دنوں. تو وہ میرا تھیٹر دیکھنے آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بیٹا میری فلم میں کام کرو. میں کوئی 22-23 سال کا لڑکا تھا، تو میں نے کہا کہ میں ضرور کروں گا. تو یہ ہوگا کیا، آپ مجھ سے کیا کروانا چاہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے محمد علی صاحب कि बाप का रोल दे दिया। तो मैंने कहा मैं तो ये दुबला पतला सा लड़का सा हूं, तो मैं कैसे करूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसे ही जो तुम्हारी बॉडी है ऐसे शख्स की जरूरत है। तो फिर उन्होंने मुझे पैड्स बनवा के दिए, यानी वो सूट वूट ये करके। तो बहुत बड़ा आदमी होता है वो, बिलियनर होता है। तो उसके बाद वो रेस वेस खेलता है, और उसका सेकेंड हाफ जो था उसमें मेरी उस तरह की बॉडी की उन्हें जरूरत थी। तो आप सुन रहे हैं?
जी जी बिल्कुल।
अच्छा अच्छा। तो वो फिर वो फिल्म जो थी वो हिट हो गई, और उस फिल्म के हिट होने के बाद फिर कतारें लग गई। फिर ये हो गया कि मैं उन बड़े बड़े एक्टर्स के बीच में अपना सर निकाल लिया मैंने। तो किस्सा मुख्तसर यह है कि ये रेडियो टेलीविजन फिर फिल्म सास, एक वक्त ऐसा आया जब मैं 24 घंटे की जगह 22 घंटे काम करता, वहां से भागा, वहां चला गया, रेडियो चला गया, थिएटर चला गया, फिल्म चला गया, रात को रिकॉर्डिंग, सुबह उठा फिर चला गया। तो बस मैं मसरूफ तरीन एक कैरेक्टर बन गया। बड़ी मेहनत की मैंने बहुत
दिन रात। मेरे ख्याल में यही वजह है कि जो पाकिस्तान में जितने भी मीडिया को देखने वाले हैं और उनको कवि साहब वाकई एक कवि किरदार के तौर पर अदाकार के ऊपर उनकी याददाश्तों में महफूज हैं, और आज भी आज तक आप काम कर रहे हैं। अब आज का ज़रा जिक्र करते हैं। आजकल आप टेलीविज़न ड्रामों में भी नज़र आते हैं, बहुत से कुछ हल्के फुल्के रोल, मिजाहिया किरदार भी, कैरेक्टर रोल्स भी। तो आजकल आपकी क्या मसरूफियत है और किस किस्म के कौन से ड्रामों में आप इस वक्त काम कर रहे हैं?
देखिए, एक तो मैंने अपने आप को हमेशा सारी जिंदगी ये समझा कि ये मेरा काम है, इसको मैंने काम समझा। पार्ट टाइम जॉब तो कभी समझी नहीं। तो मैंने कहा अब जिंदगी में मैंने सिर्फ यही करना है, और यही मेरा एक पैशन था बचपन से। तो अब मैंने 95 में फिल्म को खैराबाद किया, फिल्में प्रोड्यूस करने के बाद, एक डायरेक्ट करने के बाद, उसके बाद टोटली मैंने अपने आप को टेलीविजन के हवाले कर दिया। तो मैंने अपने वो जो फिल्म की लाइफ थी उसमें और थिएटर में टेलीविजन को कभी इग्नोर नहीं किया था, यानी कभी भी मुझे ऑफर हुई तो मैंने ना नहीं की थी। तो इसलिए जब मैं फिल्म से निकला तो मैं टेलीविजन की तरफ जब फुली मैं आ गया, तमाम तवज्जो मैंने दी, तो मैं फिर मसरूफ हो गया। बल्कि मैं आपसे अर्थ करूँ कि इस वक्त मैं अपनी इस उम्र के हवाले से जो मेरे एक्टर्स हैं, मेरे साथी हैं, उनमें मैं सबसे ज्यादा मसरूफ हूँ। इस वक्त भी मैं कराची में हूँ, और अभी यहाँ एक बहुत खूबसूरत सीरियल यासर नवाज बना रहे हैं, तुम कौन पिया उसका नाम है, और उसमें आयजा हैं और इमरान अब्बास हैं और मैं हूँ। बड़ा खूबसूरत रोल मैं कर रहा हूँ, और साथ ही मैं यहाँ दो तीन एक कॉमेडी प्लेस जो है वो कर रहा हूँ। तो मुख्तलिफ चीज़ें और मुख्तलिफ रोल्स, यानी संजीदा भी और गैर संजीदा भी, और इस किस्म के सब जो मुझे आता है, मैं असल में लुत्फ लेता हूँ अपने काम करने का। और मैं तो इस तरह मेरी एक एक्सरसाइज भी हो जाती है, और मैं जो चाहता हूँ अल्लाह ताला ने मुझे वो नवाजा है, तो इसलिए मैं बड़ा खुश रहता हूँ और मसरूफ रहता हूँ।
कवि साहब ये बताइए कि जब शो बिजनेस में जब आप शुरू में दाखिल हुए और यहाँ आपने अपनी पहचान और शनाख्त बनाना शुरू की, कोई भी नौजवान जब आपकी तरह उस जमाने में भी और आज भी माशाल्लाह खुश शक्ल भी हो और हाथों हाथ लिया जाता हो, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो फिल्म में एक लीडिंग रोल जो हीरो का कहलाता है वो करे। क्या मोहम्मद कवि साहब ने कभी हीरो का रोल किया, या ये उनके दिल में ख्वाहिश रही कि वो एक लीडिंग हीरो के तौर के ऊपर पाकिस्तान की फिल्मी सनत में पहचाने जाएं, याद रखे जाएं?
असल में हर नौजवान जब आता है तो उसके दिल में ये ख्वाहिश जरूर होती है कि वो हीरो कहलाए, क्योंकि हमारे और सारी दुनिया में हीरो का कुछ इमेज और ही होता है, हीरो यानी हीरो होता है। तो लेकिन मैंने जब फिल्में भी बनाई तो मैंने अपने आप को हमेशा टोन डाउन रखा। मैंने अपनी फिल्म किसी फिल्म में भी अपने आप को मैं हीरो नहीं लाया, लेकिन फिल्में बहुत सी उस तरह जरूर बनी जिसमें मेरा मेन रोल था। तो मेरी वो हीरोशिप की सारी ख्वाहिश वो टेलीविजन पर पूरी हो जाती थी, फिर हीरो जो हीरोइन गाना गाती है वो भी मेरे शौक पूरे हो गए, फिल्म में भी हुए। अब बाबरा जैसी बड़ी हीरोइन उसके साथ मैंने गाना गाया, मैं हीरो आया, और ये ख्वाहिशात पूरी होती रही। लेकिन मुझे लुत्फ जो है वो उसी में आता है जब एक्टर ये कहलाए कि भाई ये एक वर्सटाइल एक्टर है।
और मेरे ख्याल में आपकी जो वर्सटाइल अदाकारी थी उसी का ये कमाल है कि हीरो की मुद्दत या हीरोइन की मुद्दत आमतौर पे स्क्रीन के ऊपर एक मुख्तसर होती है, मगर आपने जिस तरह के यादगार रोल किए फिल्म टेलीविज़न और थिएटर में सब जगह, अपने अनमिट नकोश जिसे हम कहते हैं आपने वहाँ पर छोड़े हैं, उसी की शायद ये वजह है कि आज आप तक अभी भी इस वक्त आप एक हाई डिमांड में हैं और लोग आपको देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं। अब आपकी मैं थोड़ी यादगार फिल्मों की तरफ आता हूँ। मुझे कुछ याद पड़ता है कि आपने हीरो ना होते हुए भी फिल्मों में ऐसे कुलीदी किरदार अदा किए हैं, लीडिंग रोल अदा किए हैं जो फिल्म की पूरी कहानी पे छाए रहे हैं। कुछ आप अपनी पसंद के हिसाब से किसी रोल्स का कोई जिक्र करना चाहेंगे, कहीं भी रेडियो टेलीविजन और थिएटर या फिल्म में? फिल्म का एक किरदार मैं जरूर आपका जिक्र करूंगा, फिल्म आस में आपका शायद एक किरदार था जो निगेटिव था।
जी हाँ जी हाँ जी हाँ, आस में एक किरदार था,
और आबरू थी शायद एक फिल्म, या मैं गलत सोच रहा हूँ, अली सुफियान आफाकी की कोई फिल्म थी?
जी हाँ, अजनबी।
अजनबी जी
हाँ, बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी अजनबी। फिर एहसास एक फिल्म थी नजरुल इस्लाम,
नजरुल इस्लाम की जी।
फिर मैंने बनाई थी पासबान, इकबाल यूसुफ से बनवाई थी वो थी। फिर नीलाम, इकबाल कश्मीरी से फिल्म मैंने बनवाई थी वो थी। और गोरा काला फिल्म मैंने।
अच्छा, आपका प्रोडक्शन का तजुर्बा कैसा रहा, क्योंकि ये भी एक ऐसा शोभा है कि इसमें भी आपने काम किया, और तो कैसा
में हमारे वहाँ ये होता है कि प्रोडक्शन में आप देखें, ये इस शोबिज़ की दुनिया में चंद लोगों का ख्याल रखा जाता है हमेशा से, और वो सच भी है, और वो हीरो हीरोइन और जरा दो चार मेन कैरेक्टर्स ये वो, तो बाकी लोग जो हैं वो थोड़ा सा उनको हल्का सा, चूंकि मैंने शुरू से इसमें पहले स्टेप से मैं अब तक यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो इसलिए मुझे हमेशा दूसरों का ख्याल ज्यादा रहा। तो मैं सेट पे भी काम करते हुए वो अगर एक एक्स्ट्रा भी खड़ा होता है तो उसको भी मैं बहुत तवज्जो से देखता हूँ कि ये क्या सोच रहा होगा इस फर्द के, वो एक तरफ खड़ा हुआ है, अब उसे बुलाया जाएगा, उसको बेचारे की क्या फीलिंग होगी, वो भी हीरो बनना चाहता होगा। तो मैंने जब प्रोडक्शन की तो इस बात का मैंने खास ख्याल रखा। तो अगर कभी आप इत्तेफाक होगा और किसी ऐसे शख्स से आप कुछ मालूमात हासिल करेंगे कि स्टूडियो में और जो मेरे कुलीग्स थे और मेरी प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा किस बात का ख्याल रखा जाता था, तो वो हमेशा अपने अपने का नहीं, अपनी जात का नहीं, मैं दूसरों का ख्याल रखता। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुहिम शुरू से है, मैं वो टोन डाउन रहने की आदत, मुझे मैं दूसरे बेंच पे बैठने वाला हूँ, वो जो पीछे होती है मैं आगे बैठने वालों में नहीं मैंने अपने आप को कभी भी चुना। हालांकि अल्लाह ताला ने मुझे हर किस्म के अवार्ड से नवाजा, लेकिन मैं हमेशा फ्रंट की कुर्सी खाली रखता हूँ, पीछे बैठ जाता हूँ।
मेरे ख्याल में आपके परिस्तारों की बढ़ती हुई तादाद जो आपके पीक के जमाने में थी और आज भी है, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जो आपको लोग करीब से जानते हैं वो आपकी कसर नफसी से और आप दूसरों को जिस कदर उनके एहसास का ख्याल रखते हैं उससे जो वाकफियत है उसने भी आपके चाहने वालों में इजाफा किया। किसी खास किरदार का जिक्र करना चाहेंगे या किसी एक ऐसे कैरेक्टर का जिसने आपको बहुत ज्यादा मुतासिर किया हो, जो आपकी यादों में बार बार आपको दस्तक देता हो?
तो वही था, अजनबी था और नजरुल इस्लाम की फिल्म थी एहसास, वो था। और फिर टेलीविजन के बेशुमार प्लेज हैं।
जी जी बिल्कुल,
जो मैंने
बड़े यादगारी हैं, अंधेरा उजाला
की सीरीज से लेकर के साथ खालदा रियासत मरुमा के साथ, और मैंने अनवर मकसूद के कुछ प्लेस किए, कुछ पुराने प्लेस किए थिएटर पे, मैंने आगा अशर के जमाने के भी प्लेस किए और मॉडर्न प्लेस भी किए। तो वो मैं इसीलिए जरा मैं मुझे मेरी डिमांड भी रही और मैंने सोचा भी कि किरदार जो भी आए आपको, आपको आपने आमतौर पर देखा होगा कि लोग और एक्टर्स कहते हैं कि वो बड़े चूजी हैं
जी,
पहले पढ़ते हैं और देखते हैं और फिर किरदार सेलेक्ट करते हैं। मैं गालिब और मगलूब वाली बात करता हूँ। मैं ये कभी नहीं सोचता कि किरदार जो है वो मुझ पर गालिब हो जाए। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं किरदार पर गालिब हो जाऊं। तो उस हवाले से छोटा मिले, बड़ा मिले, सीरियस हो, कॉमेडी हो, जो कुछ भी हो, तो वो उसमें मुझे बड़ा लुत्फ आता है। और यही वजह है, और आपने खुद भी अभी फरमाया कि मेरे यहाँ तक अब तक यानी इस फील्ड में इतना मसरूफ रहने की बुनियादी वजह ही है। हालांकि देखिए मेरे बच्चे कनाडा में रहते हैं और मैं भी वहाँ सा गुजारा आता जाता रहता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ इतनी मसरूफियत रहती है कि मैं मुकम्मल तौर पर वहाँ नहीं रह सकता। तो इसलिए मैं बच्चों के पास भाग के दो चार महीने में चला जाता हूँ, फिर आ जाता हूँ। तो ये काम जो मेरा है, मैं समझता हूँ यही मेरी फैमिली है, यही मेरे बच्चे हैं, यही सब कुछ है, और इसी की वजह से ये जो मेरी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, जब तक मैं काम करता रहूंगा तब तक मैं जिंदा रहूंगा, मैं ये समझ। तो मुझे इससे इस कदर प्यार है, इस जुनून की हद तक कि मेरी शादी और मेरी बीमारियां और दूसरी चीजें और मुलाकातें और जितने भी फंक्शन, और मैं आमतौर पर फंक्शन पे नहीं जाता, मैं गैदरिंग में नहीं जाता। अब ये मैं ऑस्ट्रेलिया आ रहा हूँ, ये काफी अरसे के बाद मैं आऊंगा और इस तरह की मैं स्टेज पर लोगों के सामने और कुछ गुफ्तगू करूंगा, बातें करूंगा, जो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे मेरा माजी याद आएगा।
जी हम आपको जरा माजी से थोड़ा सा अब हाल की तरफ ला रहे हैं। जरा से ये बताइए कि आपने पूरी जिसे हम इंडस्ट्री कहते हैं, फिल्मी इंडस्ट्री, फिल्मी सनात, टेलीविजन, रेडियो, सब में एक पूरा अहद गुजारा है। अब ये पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान में टीवी ड्रामों और फिल्मों का एक नया अहिया हुआ है, एक तरह से दोबारा से इनमें जान पड़ी है। इस दौर को आप, अब जो दौर है, कैसा देखते हैं आप पाकिस्तान में टेलीविज़न ड्रामा और पाकिस्तान की फिल्मी सनत में जो अब यंग ब्लड आया है उसके हवाले से?
देखिए मैं दौर को कभी बुरा नहीं समझता और मैंने दौर से कभी गिला भी नहीं किया। गिले शिकवे होते हैं लोगों से, गिले शिकवे होते हैं जिस शोबे से जो लोग मुतालिक होते हैं, उनकी हरकात सकनात से। तो हमारी इंडस्ट्री पर जो जवाल आया था उसमें सभी शामिल थे, और अब अल्लाह पाक ने ऐसा कर दिया कि आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें सब फेड आउट हो चुकी हैं। अब नए वलवले, नए जोश, नए लोग, और हमारे अब जो यंगस्टर्स आए हैं, आप देखिए मैं जब यंगस्टर के साथ काम करता हूँ तो कभी आप तशरीफ लाएंगे तो आप देखेंगे कि वो लोग मुझसे किस कदर प्यार करते हैं और मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ।
यहाँ करोड़ों मील दूर बैठे हुए ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका ये परिस्तार मैं भी हूँ ऐसे ही लोगों की फेरिस्त में, जो कवि साहब कहीं भी दुनिया में हो, हम उनके ड्रामों, उनके फिल्मों, उनके तमाम परफॉर्मेंस को फॉलो कर रहे होते हैं। और हम लोग अपने जब से फन और सकाफत को देखना शुरू किया है तब से आपको फॉलोअर्स में शामिल हैं, आपके चाहने वालों में, परिस्तारों में शामिल हैं।
बड़ी मोहब्बत आपकी, बड़ी इनायत आपकी। तो ये अब जो लौट आया है और जो अब ये दौर आया है, पिछले साल दो साल से काफी फिल्में बनने लगी हैं, ये बहुत ही एक कमाल के लोग आ गए हैं, ये लड़के जो अब आए हैं, एक तो ये पढ़े लिखे सीख कर आए हैं, और फिर अब वो फीते वाला काम तो रहा नहीं, अब तो ये लेटेस्ट इक्विपमेंट है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो एक दौर फिर इंडस्ट्री के लिए आ गया है। अब वो मसरूफियत का दौर, वो लोग जो इससे अब मुंसलिक हैं, और मेरा ख्याल अब बाहर ही बाहर आएगी हमारे वहाँ फिल्म के हवाले से।
अच्छा, और टेलीविजन पे जो इस वक्त जब से प्राइवेट चैनल्स का आगाज हुआ है, एंटरटेनमेंट चैनल्स खुले हैं, जाहिर है जो पीटीवी का एक एरा था वो अब जरा पीछे रह गया और नई ओपनिंग्स आई हैं, क्या देखते हैं वहाँ जो टैलेंट डेवलप हुआ उसने फिल्मों पे भी असर डाला जो नई फिल्में आ रही हैं, लेकिन खुद टेलीविजन ड्रामे का स्टैंडर्ड के और मेयार के बारे में इस वक्त आपका क्या ख्याल है?
टेलीविजन अभी तक हमारा बल्कि और ज्यादा बेहतर हो गया। हम कहते हैं अक्सर कि پہلے جو ڈرامے ہوا کرتے تھے وہ بہت اچھے تھے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہلے چند ڈرامے ہوتے تھے, پہلے تو صرف پی ٹی وی
ایک ہی چینل تھا.
اب ہمارے وہاں اتنے چینلز آ گئے ہیں اور ہمارے وہاں نئے نئے یہ ڈائریکٹرز ہیں, کچھ باہر سے پڑھ کر آئے ہیں, تو وہ آگے اپنی نئی نئی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب ہمارے وہاں جو لڑکے لڑکیاں انٹروڈیوس ہوئے ہیں وہ اس قدر ٹیلنٹڈ ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور پھر سبجیکٹس کے حوالے سے ہمارے وہاں بانو خصیہ اشفاق احمد صاحب کا دور تھا, پھر ہمارے وہاں احمد ندیم قاسمی آئے, ہمارے وہاں بہت سے رائٹرز آ گئے, ہماری فلموں میں جو پرانے رائٹر تھے, ہمارے اب ٹیلی ویژن پہ نئے نئے اتنے اچھے رائٹر آ گئے ہیں اور ان میں خواتین بہت زیادہ آ گئی ہیں. تو اس لیے ہمارے جو چینل ہیں ان کی اب انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے کوشش ہی یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن ہو گیا ان کا, تو اس میں فائدہ یہ ہوا ہے کہ نئے نئے طرح کے سبجیکٹس اور نئے نئے اچھے مضبوط ڈائریکٹرز. تو جہاں ہر سال اب چونکہ ہر چینل جو ہے وہ اپنے اپنے ایوارڈس بھی کرتا ہے, تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی. اب آپ دیکھیے ہم لوگ جو پرانے لوگ ہیں وہ ان لوگوں میں آ کر کام کر رہے ہیں, مل کر یہ ہم سے کر رہے ہیں. میرا جہاں تک ذاتی تجربہ یہ ہے کہ انسان کو سب کہتے ہیں اور حقیقت بھی ہے, اور میں تو یہی کم از کم کرتا ہوں کہ میں اپنے جونیئر سے بہت کچھ سیکھتا ہوں. یہ الگ بات ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں, لیکن سکھاتا زمانہ ہے, اور زمانے میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل جل کر ان سے سیکھنا چاہیے, تبھی جو ہے آپ زندہ رہیں گے اور لوگوں میں رہیں گے اور گلے ملے رہیں گے, اور آپ اگر اس شعبے سے وابستہ ہیں تو آپ کا نام بھی رہے گا. اور یہی ہے زندگی, اسی طرح چلتی رہتی ہے یہی سب. اب میں نے جب مرزا غالب کیا تھا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اشفاق احمد صاحب مجھے غالب کے بارے میں, میں تقریباً 10-15 دن اس سے پوچھتا رہا غالب کے بارے میں, اور پھر میں نے وہ کوئی نادا سنج ان کا لکھا ہوا کیا, کیونکہ بہت ہی خوبصورت پلے تھا.
اچھا کبھی صاحب, اب آپ کو ہم ذرا آسٹریلیا کی طرف لے کے آتے ہیں. یہاں آسٹریلیا میں بھی آپ کے شائقین آپ کے شدت سے منتظر ہیں, اور ان کے جب آپ روبرو ہوں گے تبھی آپ کا فن یہاں والے بہت عرصے بعد براہ راست آپ سے دیکھ سکیں گے. تو یہاں کیا پروگرام آپ کا ہونے والا ہے, ذرا اس کے بارے میں بتائیے, اور آسٹریلیا کے جو سامعین جن تک آپ کی آواز سن رہی ہے اور جو آپ تک پہنچنے بھی والے ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے, ان سے کچھ پیغام یا ان سے کچھ بات کہنا چاہیں تو وہ بھی کہیے.
جی جی, میں تو سب اپنے سامعین کی سننے والی خدمت میں سلام عرض کرنے کے بعد یہی کہوں گا کہ اب آسٹریلیا میرے لیے پہلی دفعہ آنا ہو رہا ہے, تو آپ سب تشریف لائیے اور میں منتظر رہوں گا آپ کا. 5 تاریخ کو ہمارا یہ آپ سے ملاقات ہوگی میری, بلکہ دیکھیے آسٹریلیا میں تو ہماری عظمیٰ گیلانی صاحبہ بھی ہیں
جی,
جو تو ایک بہت ہی ہماری سب سے پہلی پرائیڈ آف پرفارمنس ہے. اس قدر ان کی یہاں اب بھی ڈیمانڈ رہتی ہے کہ انہیں کبھی کبھی جب فرصت ہوتی ہے تو وہ یہاں آ جاتی ہیں اور پھر ایک آدھ سیریل کر کے چلی جاتی ہیں. تو آسٹریلیا تو ان کی وجہ سے بھی ہم بہت پہچانتے, پھر ہم سے محبت کرنے والے, اور آپ کا یہ خصوصی آسٹریلیا سے یہ جو آپ کی سروس ہوتی ہے اردو کی, اس حوالے سے بھی آپ لوگ ہمیں ہم سے شناسائی ہوتی ہے اور ہم لوگوں تک آپ ہماری آواز پہنچا دیتے ہیں, یہ آپ سب کا بہت محبتیں ہیں. تو انشاءاللہ ان ساری محبتوں کو لے کر میں آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں, اور ہمارا پروگرام بہت اچھا ہوگا, آپ سے مل کر بہت خوشی ہوگی, اور میں ہمیشہ دعاؤں میں شامل رکھتا ہوں آپ سب کو, سب کو. تو اس لیے آپ مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں, انشاءاللہ 5 تاریخ کو آپ سے ملاقات ہوگی.
ضرور انشاءاللہ. اور محمد قبی صاحب, میں آخر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے مصروف شیڈیول میں سے ہمارے سامعین کے لیے وقت بھی نکالا اور بہت ہی خوبصورت یادوں کو شیئر بھی کیا, اور یہاں جب آپ ہمارے آسٹریلیا میں تشریف لائیں گے, سڈنی کے پروگرام میں شرکت کریں گے, تو یقیناً آپ کے چاہنے والے اور پرستار آپ سے روبرو مل سکیں گے.
میں آپ کا مشکور ہوں, اور بات یہ ہے کہ میرا اس میں شکریہ ختم ادا نہ کیجیے. میں ہمیشہ جب کوئی مجھ سے ملتا ہے اور गले लगाता है मुझे, तो मैं एहतरामन उसके कदमों में देखता हूँ, कभी उसकी आंखों में नहीं देखता हूँ, क्योंकि बड़ा वो होता है मिलने वाला, तो जो मिलता है वो बड़ा नहीं होता। तो इसलिए आप सब मेरे लिए बहुत मोहतरम है जिन्होंने मुझे बुलाया है, जो मुझे देखने आएंगे, इसलिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तशरीफ लाइए, जरूर मुलाकात होगी इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद कबीर खान साहब हमारे सामईन से बात करने का,
बहुत शुक्रिया।
पाकिस्तान की मायानाज टीवी, रेडियो, फिल्म और स्टेज के आर्टिस्ट मोहम्मद कबीर खान ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं। यहाँ सिडनी में 5 मार्च को उनका स्टेज प्रोग्राम हो रहा है, और इसी सिलसिले में अभी आप कबीर खान से हमारी बातचीत सुन रहे थे।